समाज को दिखलाने के लिए, उसमें भी ऐसा समाज था जिसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम में उनके डर से, समाज के डर से सीता जी का त्याग किया, किंतु जानते थे कि सीता जी भी शुद्ध हैं, और इसीलिए रामचंद्र जी ने सीता जी की सोने की मूर्ति की पूजा की। इसी तरह से हम लोगों को भी किसी कारण से यदि पति नाराज भी हो जाए, पति को तलाक नहीं देना चाहिए। आज की महिलाएं तलाक देती हैं। तुम लोग मत अपने बेटियां बेटियों को, बहुओं को मत सिखलाना, और पति भी वैसा होना चाहिए जैसा कृष्ण का श्रीमती राधिका और गोपियों के प्रति था, ऐसा होना चाहिए। भजन करके यदि ऐसा नहीं सीखेंगी आप लोग, लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगी, बात बात में रुष्ट होंगी, तो भजन नहीं होता। इसलिए भजन कीर्तन कीजिए और सारे परिवार को बड़े मृदुर स्वर से, बड़े अच्छे उदार से सबको प्रीति करते हुए चलें। पति यदि किसी बात में असंतुष्ट होते हैं तो देखना क्या जी वह संतुष्ट न हो, किंतु आज के पति भी वैसे ही हैं, शराब पीते हैं, गंदी बातें करते हैं, इसलिए उनको भी सचेत होना चाहिए। तो आप लोग इसी तरह से भजन करें और साथ साथ में आदर्श बने, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, बहुओं को भगवान का भजन करने का उपदेश करें। बहुओं से लड़िए मत, उनको अपना बेटी समझिए, और तुम लोग छोटी छोटी बहुएं हो, तुम लोग भी अपनी सास को माँ के समान समझो। इस तरह से प्रेम से रहेगी तो तुम लोगों का संसार भी ठीक रहेगा, भजन भी ठीक रहेगा, नहीं तो परिवार में परस्पर वैमनस्य बढ़ जाएगा और परिवार वो नष्ट हो जाएगा। तुम लोग घर की में लक्ष्मी हो, सीता हो, इसी तरह से तुम लोग व्यवहार करना। अपनी दोनों दो भाइयों की दो स्त्रियां भी बड़े प्रेम के साथ में रहे, उनको मत तुष्काओ जब तुम लोग अलग हो जाओ, नहीं तो इसमें बहुत गड़बड़ी होती है। इसलिए तुम लोग बड़े प्रेम के साथ में रहो, भगवान का भजन करो, आदर्श रूप में रहो, यही हमारा आशीर्वाद तुम लोगों के प्रति है। तुम बोलो कितना। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानसौ। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना, इति विज्ञाय राधे तं नय माम शरणं। आज कहाँ के, वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका के पढ़े लिखे अच्छे विद्वान समृद्ध इस लड़के ने आज हरिनाम लिया। टुडे दिस बॉय डिवोटी फ्रॉम कहाँ, वेनेजुएला ऑफ साउथ अमेरिका, टुडे ही टुक इनिशिएशन हरिनाम एंड नाउ हिज नेम हैज बीन चेंज्ड, उसका नाम अब बदल दिया गया। और पहले इनका नाम था, व्हाट योर नेम, होसे इनका नाम था इनकी भाषा में, और हमने इनको बदल करके जोसे जोशा था, और हमने बदल करके जनार्दन दास
ब्रह्मचारी यार की बार मैं तो दासाधिकारी
ये अच्छी तरह से भजन करें। इन्होंने आज से पहले ही से पान बिगड़ी बीड़ी सिगरेट चाय अफीम गांजा भांग प्याज लहसुन मसूर का दाल ये सब छोड़ करके देवता देवी की उपासना सोमवार मंगलवार का व्रत छोड़कर सब व्रत छोड़ करके राधा कृष्ण का ये भजन करते हैं। अभी हम लोग भजन करते हैं राधा कृष्ण किंतु बहुत के घर में अभी नौ दुर्गा का दुर्गा जी का पूजा हुआ होगा। मैं अभी हाथ उठवाऊं तो देखेंगे जैसे एक दो को छोड़ करके बाकी सब पूजा करते हैं। और चाय तो पीने वाले तो हम समझते हैं कि 90% से 99% तक चाय पीने वाले चाय नहीं छोड़ सकते। चाय भले ही मर जाएंगे भगवान का भजन छोड़ देंगे किंतु चाय नहीं छोड़ते। और ये लोग देखो जो सब कुछ गाय का मांस खाते थे ये लोग सुअर का मांस खाते थे शराब पीते थे और कोई सदाचार नहीं और सब छोड़ करके भजन करते हैं गले में माला देते हैं। तिलक देखो तिलक किया था आप लोग तो तिलक ले ही नहीं सकती डरेंगे अपने समाज से समाज को अपना बना नहीं सकते। अपने पति को भी भगवान के भजन में लगाएंगी और पति भी अपने स्त्री को भजन में लगाएगा। सब लोग एकादशी का पालन करेंगे रामनवमी का पालन करेंगे जन्माष्टमी का पालन करेंगे और अच्छी तरह से सीता सावित्री के समान हम रहेंगे गोपियों जैसा रह करके भजन करेंगे। ये साहसी नहीं होता थोड़ा सा साहस करना चाहिए। अपने घर को बनाओ अपने बेटों को बहुओं को लड़कियों को भी अपने समान बनाने की चेष्टा करो नहीं तो कुछ दिनों में ये संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने बात के लिए भी सोचो बच्चों को केवल अर्थ कमाएगा और अर्थ के लिए बाप माँ को भी मारेगा काटेगा बंदूक चलाएगा ऐसा मत बनाओ। यदि कल्याण चाहती हो तो अपने जैसा उनको भी बनाओ और सदाचार से रहो। दूसरे देश से जितने भी देवता हैं उनका अनादर नहीं करना है किंतु इष्ट देव हमारे मथुरा में जन्म लेने वाले गोकुल में जन्म लेने वाले कृष्ण हमारे नंदनंदन हमारे इष्ट देव हैं श्रीमती राधिका जी हमारी इष्ट देवी हैं। ऐसा यदि करोगे तब तो ठीक होगा नहीं तो हरिद्वार का कोई सन्यासी आकर के तुमको अहम ब्रह्मास्मि की दीक्षा दे देगा और फिर वैसे ही तुम्हारा हृदय निरस बन जाएगा और तुम कहेगे कि हम ब्रह्म हैं और तुम्हारे ब्रह्म जो पति है उनसे झगड़ा हो जाएगा दो ब्रह्मों में झगड़ा लग जाएगा। इसलिए ऐसा मत करो इसलिए सदाचार से रहो भगवान का भजन करो सुखी रहो। विशेष करके कलयुग में भगवान का नाम करना चाहिए। यदि तुम लोगों ने शंकर को हनुमान जी को गणेश को सरस्वती दुर्गा को कृष्ण के समान समझाया तो अपराध हो जाएगा भक्ति नष्ट हो जाएगी। बड़े सौभाग्य से मथुरा में तुम लोगों का जन्म हुआ ब्रज में जन्म हुआ या कहीं दूसरी जगह जन्म हुआ बड़े सौभाग्य से मथुरा में तुम लोगों का विवाह हुआ ब्रज में विवाह हुआ है यहाँ रह रही है ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग तो न जाने कहाँ कहाँ जन्म लिया यहाँ पर आए हैं और तुम लोग यहाँ रहने वाली इसलिए एकांतिक ग्रुप में राधा कृष्ण का भजन करो। राधा कृष्ण ही हमारे प्राणपति हैं पुत्र हैं और सभी कुछ है करो ना क्या है तो ले लेना प्रेमानंदे जाओ किसका है किसका है तो
बृहद भगवतामृतम ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे तैत्य दैहका जे लोक जे तक्त लोक धर्मांश्च मदर्थे ताम विधान्य हम।
भक्ति करने से भक्ति नहीं हो जाती विशेष करके गोपियां उनकी कृष्ण के प्रति जो भक्ति या प्रेम था वो हनुमान में भी नहीं है शंकर जी में भी नहीं है विश्व में नारद जी में भी नहीं है ब्रह्मा शंकर में भी नहीं है। ऐसी उन्नत कोटि की भक्ति उनकी थी। इसके लिए पहले हम संसार को छोड़ना तो दूर बात रहे गोपियों को कृष्ण को छोड़ करके और किसी में तनिक भी कोई स्नेह प्रेम नहीं था। लोक धर्म
वेद धर्म जो कुछ था संसार में जहां उनका स्नेह था सबको निकाल करके कृष्ण के चरणों में दिया। ऐसा होना बड़ा भारी कठिन है। कृष्ण स्वयं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ता मन मनस का अपना चित्त मन में मन हमारा कृष्ण में देने वाली मुझ में मदर्थ है हमारे लिए हम मुझको प्रसन्न करने के लिए देह दह सब कुछ को त्याग करने वाली चक्त लोक धर्म क्या सोमवार मंगलवार करना दुर्गा गणेश काली इत्यादि की उपासना ये सब लोक धर्म है। यहाँ तक कि पति सास ससुर माता पिता इनके प्रति भी जो धर्म है ऊपर से दिखाने के लिए करती हैं कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती हैं। यदि व्रत भी करना है तो कृष्ण का ही व्रत करेंगे और दूसरे का व्रत नहीं। हाँ गिरिराज गोवर्धन को करेंगी क्योंकि गिरिराज गोवर्धन भी कृष्ण ही है एक तरह से वो कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। ब्रज में कात्यायनी की पूजा स्त्रियां कर सकती हैं क्योंकि कात्यायनी भी कृष्ण की जोग माया शक्ति हैं। गिरिराज की परिक्रमा करेंगी ललिता विशाखा का करेंगी एकादशी का व्रत करेंगी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जमुना जी का पूजन करेंगी क्योंकि कृष्ण की प्रियसी हैं इसलिए उनके कृष्ण के परिकरों को राधा जी के परिकरों की तो हो सकती है और दूसरे के प्रति यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। एक तृण में भी भगवान है इसलिए तृण को भी सुअर को भी गधे को भी हम प्रणाम कर सकते हैं क्योंकि उसमें भगवान है। सभी जीव स्वरूपतः भगवान के दास हैं उनको हम भूल करके इस जगत में आए हैं इसीलिए कृष्ण यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। केवल पढ़ना यथेष्ट नहीं है सुनना यथेष्ट नहीं उसको पालन करना चाहिए हमको भी ऐसा होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी टीका कर रहे हैं जिसको मैं कल बतला रहा था। यहाँ पर कृष्ण स्वयं उनके प्रेम महात्मा को वर्णन कर रहे हैं ये गोपियों का प्रेम हमारे प्रति कैसा है। तुम ऐसा समझ सकते हो उद्धव को कहेंगे उद्धव वे गोपियां यदि अपना मन प्राण देह और समस्त कार्यों को प्रत्याग करके निसंग हो गई हैं कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ करके तो वे कृष्ण के लिए ही क्यों नहीं मथुरा में आ जाती। यदि सभी कुछ अपना मान सम्मान लोक धर्म वेद धर्म सब कुछ को उसने गोपियों ने छोड़ दिया जब किसी की लोक लज्जा की परवाह ही नहीं रही तो गोपियां मथुरा में चली आती। वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है दो अंगुल की दूरी है या पांच मील समझो या बरसाना भी नंदगांव भी लो तो 21 माइल ये भी उस समय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यदि बरसाने से श्रीमती राधिका जी झट राधा कुंड और सूर्य कुंड में जा सकती हैं थोड़ी ही देर में और उनसे मिलकर के फिर थोड़ी देर में घर में लौट सकती हैं तो उनके लिए यहाँ आना कोई अधिक देर की बात नहीं है। किंतु क्यों नहीं आती गोपियां क्या गोपियों की चेरियां भी दासियां भी यहां पर नहीं आती क्यों नहीं आती उसके लिए वह मदर थे हमारे लिए नहीं आती जो चला गया हमारे लिए नहीं आती क्या मेरे लिए ही मेरे निकट में नहीं आती क्यों नहीं आती हमारे प्रियतम कृष्ण मथुरा में बड़े सुखी होंगे वहां के जितने लोग उनके सखा लोग हैं बड़े प्रेम से उनके साथ में रहते होंगे और कृष्ण वसुदेव जी को पिताजी देवकी को मैया कहते होंगे उनका लाल पालन कर रहे होंगे और वहां की जादव पत्नियां जितनी हैं कृष्ण को बड़ी प्यार कर रही होंगी कृष्ण का वहां मन लग गया होगा। यदि हम जाएंगे तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा तो वो दुखी हो सकते हैं या अरे ये गोपियां क्यों बेकार की यहां आई मैं बड़ा आराम से था ऐसा सोच करके अथवा मदर से कृष्ण को देख करके कृष्ण को पूर्वी स्मृतियां आ रही, अभी भूल रहे हैं सबको, अब भूल करके अपने सखाओं के साथ में मथुरा में द्वारका में अपने सखाओं के साथ में हैं, अथवा द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ में रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि के साथ में अपने बेटियों के साथ में हैं। यदि हम जाएंगी तो उन्हें याद हो जाएगी, हमारी भी चिंता, उनको भी किसको छोड़ें किसको रखें, बड़े उद्विग्न हो जाएंगे। और भी इससे भी बात, सब भूले हुए हैं, हमारे विरह को भूले हैं, हम जाएंगे तो बस हम लोगों का विरह उनको सताएगा, इसलिए मदर से हमारे लिए वो नहीं आते, विशेष करके हमारे आज्ञा का पालन करने के लिए कृष्ण करें। मैंने कहा था कि तुम लोग मत आओ, हमारे साथ आ रही थी, हमको आने नहीं दे रही थी गोपियां, रथ को चारों तरफ से पकड़ लिया, उद्धव को कहा कि उद्धव क्यों ले जा रहे, तू उद्धव कहता है तू वहां झूठा मक्कार है, अक्रूर तू बड़ा मक्कार है, तू कहता है जे इनके पिता माता वसुदेव देव की हैं, और हम लोगों ने देखा यशोदा जी ने नंद को इनको कृष्ण को जायो उनको जन्म दिया गोकुल में, हम लोगों ने देखा उनकी नारी छेदन हुआ इस गोकुल में, मथुरा में इसका कब जन्म हुआ, इसका तो जन्म नहीं हुआ, हम तो जन्म के दिन से ही जा करके देखा जे वहीं पर जन्म हुआ है, इसलिए ये झूठी बात है, ये नंद का पुत्र है और यशोदा जी का पुत्र है। इसलिए मथुरा जाने के समय, मथुरा जी समय जा रहे थे, गोपियों ने उनको भी संपात कुछ दिया, इसलिए जीवन में सुखी नहीं रहे, उनको भाग करके द्वारका छोड़ करके जाना पड़ा था अक्रूर जी को, है ना, इसलिए कह रहे हैं कि मैं केवल उस समय में समझाया था गोपियों को, देखो तुम ब्रज में रहो, ब्रज को छोड़ करके मत जाओ, मैं आज कल परसों में जरूर आ जाऊंगा, बस कृष्ण की आज्ञा पालन करने के लिए, चाहे प्राण चला जाए, प्राण जाए बरु वचन न जाए, कृष्ण के वचन न जाए अपना वचन चला जाए, किंतु कृष्ण ने यह कहा है कि तुम लोग वृंदावन में रहो, मैं बहुत जल्दी से आ जाऊंगा, इसलिए मेरे आदेश को पालन करने के लिए मेरी आज्ञा से वो ब्रज में है, नहीं तो चली आती हूं, मैं शीघ्र ही आऊंगा। इस आश्वासन के कारण आज भी बड़े कष्ट से किसी प्रकार से वहां अपने शरीर को धारण कर रखा है, अथवा मेरी प्रीति की बात सोचकर मदर से देह संबंधी पति पुत्र अलंकार इत्यादि को मदर्थ धारण कर रही हैं। किस लिए? जिस दिन कृष्ण ने पिताजी के साथ में स्वर्ण के आभूषण भेजे, नंद बाबा कहे सोचा कि मैं उनको यशोदा को मैं कैसे अलंकार दूंगा, वो कहे जी अपने बेटे को बेच आए स्वर्ण अलंकार से, तो अभी कृष्ण दे रहे हैं इसलिए लेकर के गए, लेकर के यशोदा जी के सामने रख दिया, किंतु बोले जैसे यही बोले ये कृष्ण ने तुम लोगों के लिए भेजा है। गोपियां दुखी तो हुई, किंतु दुखी होने पर कृष्ण ने भेजा है हमें, इसलिए कृष्ण के प्रति के लिए अलंकार धारण कर रही है। देह संबंधी पति और पुत्र को भी नहीं त्याग किया, घर में ही हैं, कैसे हैं उनको पता नहीं ये कैसे हैं, स्वयं कृष्ण की योग माया उनका रूप धारण करके पतियों के साथ में लौकिक जितना रसोई बनाना उनके साथ में लौकिक व्यवहार है सब कुछ कर रही है, और उन छाया गोपियों को जिसको योग माया बनाया है उनके पुत्र भी हो रहे हैं संतति भी हो रहे हैं, वो लोग बड़े खुश हैं, देखो तो हमें पुत्र हो रहा है, ये गोपियां मेरी पत्नी हैं, किंतु उन गोपियों से उनका कोई भी संबंध नहीं, बड़े आश्चर्य की बात। किंतु हमारे अलंकार को धारण कर रही है, अथवा मदर्थ त्यक्त वहां पर अत्यक्त, और यह हो जाएगा त्यक्त मेरे लिए, अब किसके लिए आभूषण धारण करें, किसके लिए पति हैं, पुत्र किसके लिए, किसी से संबंध नहीं। सीता जी लंका में जाकर 12 महीने या जितने दिन रहीं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, स्नान नहीं किया, कपड़े नहीं बदले, कुछ भी नहीं खाया, चुपचाप अशोक के पेड़ के नीचे बैठी रहीं। तो ये कम है? ये क्या कृष्ण के जाने के बाद में बिना भोजन के, कपड़े बिना स्नान किए हुए नहीं रह सकती? कृष्ण के विरह में रोती हैं, तड़पती हैं, और आंखों से जो आंसू आते हैं और धूल मिलकर के जो उनके कपड़ों पर जम जाते हैं, स्नान नहीं करती। जैसे कृष्ण संबंधी ये आंसू और धूल है, यही लालच न धोवावत साड़ी, साड़ी को भी नहीं धोती। ये कृष्ण संबंधी आंसू हैं और उनके ये कपड़े हैं, इसलिए नहीं धोवाती। इस तरह से गोपियों की, गोपियां बड़ी हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, कदम इसके पेड़ को देख करके, समाल को देख करके उनसे मिलती हैं, ये कृष्ण मिल गए, उनसे बातें करती हैं। कोई लोग नहीं समझ सकता, जागृत में उनकी समाधि है, सहज समाधि जिसको कहते हैं, गोपियों की समाधि है। सारे चीजों को विस्मरण कर चुकी हैं मदर से। अतः हे उद्धव, मैं तुम्हें उपदेश देता हूं कि मैं जो संदेश दे रहा हूं इसका भाव बड़ा गंभीर है, गोपियों का अतिरिक्त कोई भी जगत में नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता है। तुम नहीं समझोगे जब मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए हमारी शब्दावली का जो संदेश है, जो शब्दावली में बस शब्दों को उनके सामने कह देना, उसका अर्थ भावार्थ ये सब मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत में बहुत से ऐसे श्लोक हैं, प्यार हैं, या वेदांत सूत्र के बहुत से सूत्र हैं, जिसको साध भट्टा जी व्याख्या जी कर रहे हैं और महाप्रभु जी का क्या कर रहे हैं, सुन करके भी अनसुना कर रहे हैं। जब उनका 7 दिन का पारायण हो गया प्रवचन, तो उन्होंने कहा, तुम समझते हो कि नहीं, तुम हाँ भी नहीं करते, ना भी नहीं करते, तुम्हारी मुखाकृति से मालूम होता है, या तो तुम नहीं समझते या अनसुना कर रहे हो, नहीं समझते हो तो पूछ क्यों नहीं लेते। महाप्रभु जी ने बड़ी नम्रता से उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सूत्र जो है उसको सुन करके उसका तात्पर्य एकदम सूर्य की समाधि हमारे हृदय में चमकने लगता है, उसको समझ जाता हूँ, स्पष्ट है, किंतु आप जो व्याख्या कर रहे हैं कैसा है, उसको मेगा छन्न करके उसको दूसरे रूप में, विपरीत रूप में व्याख्या करते हैं। हमारे गुरु जी जबकि कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय में उनके टीचर लोग उस समय में क्लास में चैतन्य चरितामृत पढ़ाया जाता था, गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन था, तो उसको पढ़ाते थे, तो उसमें है तत्त्वविदः तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ये एक श्लोक है भागवत का, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम्। जो टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, पढ़ा रहे हैं, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम्, तत्व को जानने वाले कहते हैं कि अद्वैय तत्व ही परम तत्व है। अद्वैय क्या है? सब जीव एक है, ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। कहीं कहीं पर उसी को ब्रह्म और कहीं कहीं उसी को परमात्मा, उसी को, और इसमें जो ब्रह्म कहा गया है यही श्रेष्ठ है, उसके नीचे क्या है? परमात्मा। और कौन? जो हृदय में निवास करने वाले, और उनसे भी निम्न कौन है? जो शरीर धारण करके इस जगत में उनका कुछ अंश है, वो जो भगवान कृष्ण राम इत्यादि हैं, वो माया को ग्रहण करके इस जगत में आए हुए हैं, उनका शरीर माइक है, उनके अंदर में जो है परमात्मा और ब्रह्म वही शुद्ध है। गुरु महाराज ने उनके विचारों का खंडन किया, उनके यहाँ पढ़ने गए। कह जी ये सब चीजें गुरु परंपरा में नहीं आने से कोई नहीं समझ सकता, बड़ा भारी कठिन है। तो गोपियों का भाव तो इतना ऊंचा, दूसरा कैसे समझेगा? उन्होंने उनको बतलाया अद्वैय ज्ञान पर तत्व का क्या तात्पर्य है, स समझो इसको, वो समझे कि छोटा सा बालक हमको क्या पढ़ाएगा और समझाएगा। उस समय उनकी उम्र 16 से 17 वर्ष के अंदर में होगी, क्योंकि 19 वर्ष की स्थिति में तो वो चले आए और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने हरिनाम ली और दीक्षा ली। इसलिए उसी से उसके पहले ही जिस स्कूल में पढ़ते थे कॉलेज में, उसी समय उनसे वार्तालाप। उन्होंने कहा अद्वैत ज्ञान पर तत्व किसको कहते हैं? एक पर तत्व है, दो नहीं। उसकी शक्तियां हैं, विशेष करके तीन शक्तियां, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। उसमें चित शक्ति से अनंत कोटि वैकुंठ, ब्रज इत्यादि गोलोक उससे प्रकट हुआ और वहां के जो रहने वाले हैं वो सब हुए। और जो जीव शक्ति है उसे अनंत जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव, हम लोग सब बद्ध जीव और मुक्त जीव जो वहां पर सेवा करते हैं वो सब प्रकटित हुए हैं। और जड़ शक्ति, माया शक्ति, जिससे कि यह असंख्य विश्व ब्रह्मांड का स्थूल शरीर, हम लोगों का शरीर, ये सब पैदा हुआ है। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, इसलिए शक्ति से उत्पन्न जीवों का भी भगवान से भेद और अभेद दोनों है। यह है अद्वैत ज्ञान पर तत्व। इसमें भी और से बहुत से विचार है। वही बहुत नीचे की उपासना के द्वारा वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं निराकार ब्रह्म। केवल चित्त शक्ति का आंशिक विकृत प्रतिफलन है ब्रह्म, जिसका रूप ही नहीं है, कोई गुण नहीं है, भाव नहीं है। ये बहुत दूर की नीची उपासना से ये उसके रूप में दिखता है। कैसे? जैसे हम हिमालय के तरफ में जब जाते हैं तो हरिद्वार से पहले कौन सा स्थान है, सहारनपुर, वहां से काला एकदम बादल जैसा दिखता है उत्तर की तरफ में, और कुछ नहीं दिखाई देता। ओ हिमालय कैसा है? काला मेघ के समान। जब और जब हरिद्वार में पहुंचेंगे तो देखेंगे कि ये इसमें पहाड़ भी है, इसमें वृक्ष दिख रहे हैं और गंगा नदी उधर से आ रही है। और जब ऋषिकेश में पहुंचेंगे तो देखेंगे क्या, इसमें पहाड़ हैं, पर्वत हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, लताएं हैं, बाघ हैं, सिंह हैं, भालू हैं, हाथी हैं, तरह तरह के जानवर हैं, तरह तरह के आदमी हैं, सब कुछ वहां पर है, निकट में पहुंचेंगे। ऐसे जब दूर की उपासना से ब्रह्म को देखते हैं, उसी कृष्ण को ही देखते हैं तो निराकार दिखता है। जब और समीप में जाते हैं, जबकि जो की उपासना करते देखते हैं जबकि, तो उसी को देखते हैं परमात्मा सबके हृदय में साक्षी रूप में है, अंगुष्ठ परिमाण में, उसका कुछ आकार भी है किंतु अंगुष्ठ परिमाण। जगन्नाथ जी को जैसा देखते हैं, सालग्राम को जैसा देखते हैं, सालग्राम शिला का कोई आकार है कि नहीं है? कौन सा आकार है? कौन सा आकार? कुछ भी आकार नहीं, न हाथ पैर दिखता है किंतु दिखता तो है। वैसे परमात्मा दिखेंगे किंतु कैसा रूप है वो नहीं बतला सकते को। उनका चारों तरफ हाथ है, चारों तरफ मुख है, चारों तरफ पैर है, और उनको निराकार भी कह सकते हैं, उनको साकार भी कह सकते हैं। साधारण बुद्धि के द्वारा उसका सामंजस्य नहीं होगा। और जब और निकट में जाएंगे तो उनको नारायण के रूप में देखेंगे, हजारों परिकर उनकी सेवा कर रहे हैं। और जब भी निकट में जाएंगे, ऊंची उपासना करेंगे, तब वो किस रूप में दिखेंगे? राम इत्यादि के रूप में दिखेंगे। और प्रेम में, ब्रज प्रेम से उनको देखेंगे, तब तो देखेंगे आपको कृष्ण के रूप में। और भी ऊंचे रूप में जब जाएंगे तो यशोदानंदन के रूप में देखें, और प्रेम के ऊपर में उठ जाइए गोपी जन बल्लभ, और थोड़ा सा और ऊपर उठ जाइए तो राधा कांत के रूप में देखेंगे। ये सर्वोत्तम, ये अद्वैत ज्ञान पर तत्व की चरम सीमा, ये ब्रजेंद्रनंदन राधा कांत है। तब समझेगा कौन? इसलिए ये कहते हैं बहुत सुदुर्गम है ये कृष्ण प्रेम, ब्रज प्रेम। यद्यो यद्यपि मैं तत्वतः सबका नित्य कांत हूं, कृष्ण कह रहे हैं उद्धव, सर्वतः मैं तत्वतः मैं सबका कांत हूं। कांत माने क्या? पति। कांत मैंने प्रियतम हूं, मैं सबका पति हूं, चाहे पुरुष हो और चाहे नारी हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, सबके हम पति हैं। पति माने पालन पोषण करना, तो त्राण करना, त्राण किस चीज का नाम, सब प्रकार के नीचे से ऊपर तक जितने त्राण हैं, भोजन इत्यादि के द्वारा स्थूल शरीर की रक्षा, माता के गर्भ में पिता के द्वारा जाना, बुद्धि देना, जितने प्रकार के दुख है उसे त्राण करना, यहां तक कि माया से त्राण करना, भक्ति देकर के वीर से त्राण करना, उसे ब्रजप्रम देकर के ये पालन पोषण करना, इस तरह से विश्वम्भराय धीमहि, महाप्रभु इसलिए कहते हैं प्रेम देकर के सबका पालन पोषण करते हैं। तो इस तरह से जगत का मैं प्रियतम हूं, पिता हूं, पति माने भी वही होता है जो पिता का अर्थ होता है, परित्राण करना और पालन पोषण करना, दोनों में अर्थ में कुछ इधर उधर नहीं है। और कांत माने सभी हमारे प्रियतम हैं, हमारे अंश हैं, तथापि कोई एक अनर्वचनीय जिसको वचनों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, महासुदुर्लभ रस वैचित्र्य का आस्वादन कराने के लिए मैं